हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अक्षत को समझ आ रहा था कि आदित्य उसके लिए कितना परेशान होगा, लेकिन फिलहाल वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि उससे मिलकर उसे तसल्ली भी नहीं दे सकता था। थोड़ी देर बाद विवान अपने कमरे में चला गया और अक्षत बैठा इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। उसका नैना से बात करने का भी मन हो रहा था, लेकिन उसे लगा कि ऐसी सिचुएशन में अभी नैना को कॉल करना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने कॉल नहीं किया। इसके अलावा जो प्लान उन्होंने बनाया था उससे वो सीधे नैना से बात नहीं कर सकता था, इसलिए अक्षत काफी बेबस महसूस कर रहा था। वो अपनी इन सोचों में डूबा हुआ था तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। उसने देखा कि रागिनी का कॉल है। स्क्रीन पर उसकी कॉलर आईडी देखकर अक्षत ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल पकड़ते हुए कहा, क्या करूं मैं इस लड़की का, एकदम ग्रहण की तरह मेरी लाइफ पर चिपकी हुई है। पता नहीं आखिर चाहती क्या है, इतना बड़ा झूठ बोल रही है, वो भी इतने कॉन्फिडेंस से। कुछ तो करना पड़ेगा इसका, वो भी जल्दी ही। अपने आप से बात करते हुए ये सब सोचकर अक्षत ने आखिरकार आखिरी रिंग पर उसका कॉल रिसीव कर लिया। फिर एकदम बनावटी मुस्कुराहट के साथ एक्टिंग करते हुए बोला, हाय, हाउ आर यू रागिनी, क्या हुआ, तुमने इस वक्त कॉल किया? और फिर अक्षत उसी तरह अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए उससे कॉल पर बात करने लगा। शायद उसे कुछ और बातें पता चल जाएं, लेकिन रागिनी काफी चालाक थी। वो अक्षत से एकदम लिमिटेड बातें करती थी जो सिर्फ काम की और उसके फायदे की होती थीं। अगले दिन सुबह आदित्य पहले की ही तरह वहां बैठा हुआ था, जगह से जरा भी टस से मस नहीं हुआ था। उसके चेहरे पर एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन था, वो किसी से भी कुछ भी बोल नहीं रहा था और ना ही किसी बात का कोई जवाब दे रहा था, लेकिन असल में वो बस सुनैना के बारे में ही सोच रहा था। तभी डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए कमरे में गए। डॉक्टर के कमरे के अंदर जाते ही आदित्य और नैना दोनों ही उस तरफ देखने लगे। कुछ देर तक सुनैना का चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसके कमरे से बाहर निकले। नैना उनके पास आती हुई उनसे कुछ बात करने लगी। वो बात आदित्य को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी आदित्य जानना चाहता था कि नैना आखिर डॉक्टर से क्या पूछ रही है। अगर कुछ भी सुनैना के बारे में है तो वो उसे लेकर थोड़ा सा क्यूरियस था, लेकिन ये उसके चेहरे पर नहीं दिख रहा था और ना ही उसने खुद से कुछ भी पूछा। कुछ देर बाद नैना आदित्य के पास आई और बोली, पूरी रात बीत गई और अब तो सुबह हो गई है, क्या तुम्हें भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी आदित्य? आदित्य ने नैना की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन नैना की ये बात सुनकर नदीम और अरविंद दोनों ही हैरान और परेशान हो गए। उन दोनों को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि पिछले 24 घंटे से आदित्य ने कुछ भी खाया पिया नहीं है और वो उसी तरह वहाँ पर बैठा हुआ है। ये बात पता चलते ही नदीम कॉफ़ी लेने चला गया, क्योंकि उसे पता था आदित्य को कॉफ़ी पसंद है, भले ही वो कुछ खाए पिए ना, लेकिन कॉफ़ी पी लेता है। अरविंद अभी भी वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद नदीम कॉफ़ी लेकर आया और उसने वो कॉफ़ी आदित्य को देते हुए कहा, सर प्लीज़ कॉफ़ी तो पी लीजिए, ऐसी भी क्या नाराज़गी है खाने पीने से, मैम ठीक हो जाएंगी, लेकिन उनके लिए आपको भी तो ठीक रहना होगा ना। नदीम की बात सुनकर अक्षत ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर से कुछ भी नहीं बोला। उसके इस तरह से देखने का मतलब समझते हुए नदीम मायूस हो गया और समझ गया कि अक्षत वो कॉफ़ी तो क्या, पानी भी नहीं पीने वाला है। इतना सोचते हुए वो वहां से वापस जाने लगा। तभी एक हाथ आगे बढ़ा और नदीम के हाथ में पकड़ा हुआ कॉफ़ी का कप अपने हाथ में ले लिया। उस आदमी ने कहा, लाओ मुझे दो, इसे तो मैं पिलाता हूँ। उस आदमी की आवाज़ सुनकर नदीम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो उसे नहीं पहचानता था, लेकिन फिर भी उसने उसे वो कॉफ़ी कप दे दिया, ये सोचकर कि वो ज़रूर कोई दोस्त या रिश्तेदार होगा, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहा है। नहीं तो आदित्य जैसे व्यक्ति को डाइवर्ट करना या फिर उसे किसी चीज़ के लिए राज़ी करना कोई इतनी छोटी बात नहीं है। वो आदमी आगे आया और आदित्य के सामने खड़ा हो गया, लेकिन आदित्य इस वक्त नीचे फर्श की तरफ देख रहा था और अपने सामने आने जाने वाले किसी भी इंसान की तरफ उसका ध्यान नहीं था और ना ही वो उनकी बातें गौर से सुन रहा था। तभी उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो कॉफ़ी का कप आदित्य के चेहरे के सामने करते हुए कहा, आदि ये कॉफ़ी पी लो मेरे लिए। ये आवाज़ सुनकर आदित्य ने एकदम चौंकते हुए ऊपर की तरफ देखा, वहाँ पर अनय खड़ा हुआ था, उसके साथ मनस्वी भी थी। आज पहली बार ही मनस्वी और आदित्य का आमना सामना हुआ था। आदित्य ने गुस्से से घूरते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन मनस्वी सुनैना की इस हालत के बारे में पता चलने के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी, इसलिए वो आदित्य से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। सही या गलत जो कुछ भी हुआ, भले ही इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता था कि शायद वो विराज को ये सब करने से रोक सकती थी, लेकिन रोक नहीं पाई, इसलिए उसे लग रहा था कि ये उसका फेलियर है। आदित्य ने नज़र उठा के अनय की तरफ देखा और उसके साथ ही खड़ी मनस्वी को भी। उन दोनों को साथ में देखकर वो एकदम ही अपनी जगह से उठकर खड़ा होता हुआ बोला, ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है? अनय, और तुम इसे लेकर क्यों आए? ये तो
अनय की इस बात पर अनय कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जो कुछ भी सच था उसकी मैरिड लाइफ का, उसने वही आदित्य को बताया था। लेकिन अभी पिछले एक दो महीनों में उनके बीच, अनय और मनस्वी के बीच काफी कुछ बदल गया था। इस बारे में सोचते हुए अनय ने मनस्वी की तरफ एक नज़र देखा और अनय ने नोटिस किया कि मनस्वी की आंखों में आंसू हैं। अनय उसे कुछ समझाने के लिए बोलना चाहता था, लेकिन मनस्वी अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हट गई। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा और अनय की तरफ देखा, लेकिन उसने उसे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। इसके बाद वो एक पल के लिए भी वहां पर नहीं रुकी और वहां से भाग गई। इतने दिनों में आज पहली बार मनस्वी को इस तरह इमोशनल होते और रोते देखकर अनय के दिल में टीस उठी और उसे मनस्वी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आदित्य ने उसे कितना कुछ सुनाया, लेकिन आदित्य फिलहाल कुछ समझने की हालत में नहीं था, इसलिए उसने उसे कुछ भी नहीं बोला। लेकिन मनस्वी को इस तरह भागकर वहां से जाते देख अनय भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन फिर एक नज़र उसने आदित्य की तरफ देखा, जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी, और वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर दोबारा वही बेंच पर बैठ गया था। अनय ने उसे ऐसी हालत में देखा तो उसे लगा कि इस वक्त आदित्य को उसकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो चाहकर भी मनस्वी के पीछे नहीं गया और वहां पर आदित्य के साथ ही रुक गया। आदित्य से कुछ देर बातचीत करने के बाद अनय ने उसे समझा बुझाकर कॉफी पिला दी। नैना, अरविंद और नदीम तीनों ही वहां पर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। ऐसी बातें सुनने के बाद नैना और बाकी को समझ आ गया था कि अनय कोई और नहीं, आदित्य का दोस्त है। कम से कम इतना तो उन दोनों को साथ देखकर समझ आ रहा था, क्योंकि आदित्य जो अभी तक कल से किसी से भी बात नहीं कर रहा था, अभी वो अनय से थोड़ा बहुत बोल रहा था और उसकी बातों का जवाब दे रहा था। दोपहर के बाद जब डॉक्टर सुनैना का चेकअप करके बाहर निकले तो इस बार आदित्य उनसे बात करने के लिए गया। आदित्य के पूछने पर डॉक्टर ने उसे बताया कि सुनैना को अभी तक होश नहीं आया है, लेकिन वो अभी कोमा में भी नहीं है, इसलिए हो सकता है उसे कुछ घंटों में होश आ जाए। डॉक्टर की ये बात सुनकर आदित्य को काफी अच्छा फील हुआ और उसने मन ही मन ऊपर वाले को थैंक यू कहा। नैना भी ये सुनकर खुश हुई और उसने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि अब उन दोनों को सुनैना के ठीक होने और होश में आने के चांसेस और उम्मीद दोनों ही नजर आ रही थीं। वहां पर मौजूद बाकी लोग, अरविंद, नदीम और अनय भी डॉक्टर की ये बात सुनकर राहत की सांस लेते हैं और अनय जाकर आदित्य को अपने गले से लगा लेता है। क्रमशः